एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी पहली मेजबान और आज यहां मेरे साथ है।
नमस्कार, मैं हूं आपका दूसरा मेजबान और आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हम सबके लिए बहुत आम हो गई है, इंटरनेट।
हाँ, इंटरनेट, लेकिन हम इसे सिर्फ तकनीक की तरह नहीं देखेंगे।
बिल्कुल नहीं, आज हम रसेल न्यूमन के एनालिसिस को समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने इंटरनेट को एक सामाजिक और यहाँ तक कि राजनीतिक शक्ति के तौर पर देखा है।
और ये आज समझना जरूरी क्यों है? क्योंकि इंटरनेट अब सिर्फ मैसेज भेजने या कुछ सर्च करने तक सीमित नहीं रहा, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे समाज को, हमारी राजनीति, अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि हम कौन हैं, हमारी पहचान, सब बदल रहा है।
सही, तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव किस तरफ जा रहा है? क्या इंटरनेट हमें ज्यादा जोड़ रहा है, ज्यादा आजाद बना रहा है,
या फिर कहीं ये नियंत्रण और निगरानी का एक नया, ज्यादा पावरफुल टूल तो नहीं बन गया? न्यूमन के आइडियाज हमें ये बड़ी पिक्चर समझने में मदद करते हैं।
हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को।
तो पहले ये समझें कि ये रसेल न्यूमन हैं कौन। दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ कोई टेक एक्सपर्ट या इंजीनियर नहीं है।
हाँ, उनका दायरा काफी बड़ा है। वो सोशियोलॉजी, मीडिया स्टडीज, डिजिटल कल्चर और हाँ, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कम्युनिकेशन,
मतलब मीडिया और सत्ता का रिश्ता,
उसके भी जानकार हैं।
और यही उनके काम को खास बनाता है। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि इंटरनेट कैसे काम करता है।
नहीं, वो ये सवाल पूछते हैं कि इंटरनेट वैसा क्यों है जैसा वो आज है? इसके पीछे की सामाजिक ताकतें कौन सी है? आर्थिक हित, राजनीतिक सोच।
हाँ, वो हमें स्क्रीन के पीछे देखने में मदद करते हैं असल में।
और उनका नजरिया, जैसे आपने कहा, बड़ा बैलेंस्ड है।
हाँ,
वो ना तो टेक आशावादी है कि भाई तकनीक सब ठीक कर देगी,
और ना ही वो निराशावादी कि बस अब सब खत्म। नहीं, वो इंटरनेट की असलियत दिखाते हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इसके अंदर के विरोधाभास, और इस पर कंट्रोल के लिए जो एक खींचतान चल रही है उसको भी उजागर करते हैं।
बिल्कुल, एक तरह से टेक और समाज के बीच का पुल।
हाँ, कह सकते हैं।
तो फिर न्यूमन के विश्लेषण का निचोड़ क्या है? मतलब मेन आर्ग्यूमेंट क्या है?
देखिए, सबसे बड़ा तर्क तो ये है कि इंटरनेट कोई बेजान चीज या हवा में उड़ता हुआ क्लाउड नहीं है। ये सबसे पहले तो एक जबरदस्त सामाजिक घटना है।
सामाजिक घटना
मतलब जैसे प्रिंटिंग प्रेस ने या औद्योगिक क्रांति ने दुनिया बदल दी थी, वैसे ही इंटरनेट ने हमारे जुड़ने का, बात करने का, जानकारी शेयर करने का, यहाँ तक कि सोचने का तरीका ही बदल दिया है।
ये तो है।
और साथ ही ये सिर्फ सामाजिक बदलाव नहीं है, न्यूमैन इसे कॉम्प्लेक्स सोशियो टेक्निकल असेंबलेज कहते हैं।
सोशियो टेक्निकल असेंबलेज,
हाँ,
ये थोड़ा भारी शब्द है।
हाँ, सुनने में लगता है, पर इसका मतलब आसान है। सोचिए, जैसे एक शहर सिर्फ बिल्डिंग्स और सड़कें नहीं होता, उसमें लोग होते हैं, नियम होते हैं, बाजार, कल्चर, सब मिलके शहर बनता है ना।
हाँ हाँ बिल्कुल।
वैसे ही इंटरनेट सिर्फ कोड और केबल नहीं है।
अच्छा, तो इस असेंबलेज या संयोजन में क्या क्या आता है फिर?
इसमें आता है असली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो समुंदर के नीचे की केबलें, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, फिर है इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे एडवर्टाइजिंग वाला मॉडल
जो ज्यादातर फ्री सर्विस चलाता है।
बिल्कुल। फिर इसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज भी हैं, जैसे खुलापन चाहिए या कंट्रोल, हमारी कल्चरल आदतें, हम ऑनलाइन कैसे पेश आते हैं, क्या शेयर करते हैं, और हाँ, गवर्नेंस मॉडल, मतलब नियम कौन बनाएगा, कैसे लागू होंगे।
और ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं।
हाँ, एक दूसरे से जुड़ी हैं और लगातार बदल रही हैं, और इस पर किसका कंट्रोल हो, इसके लिए कंपनियां, सरकारें और हम जैसे यूजर्स सब कोशिश में लगे हैं।
तो न्यूमैन इसी उलझे हुए ताने बाने को सुलझाने में मदद करते हैं। कौन कंट्रोल कर रहा है, या हमारी कम्युनिटी, पहचान, प्राइवेसी, पावर बैलेंस, इन सब को कैसे बदल रहा है?
हाँ, क्या ये जोड़ रहा है या कहीं ना कहीं बांट भी रहा है, इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश है ये।
चलिए थोड़ा और डीप चलते हैं। इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी?
इसकी जड़ें हैं अमेरिकी सेना के एक रिसर्च प्रोजेक्ट में, आर्पानेट, 60 के दशक के आखिर में।
अच्छा, मिलिट्री प्रोजेक्ट।
हाँ, फिर ये यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में फैला। उस शुरुआती दौर में माहौल काफी खुला हुआ, सहयोग वाला और नॉन कमर्शियल था।
लेकिन फिर 90s में सब बदल गया।
हाँ, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इंटरनेट का प्राइवेटाइजेशन और कॉमर्शलाइजेशन शुरू हुआ, और यहीं से वो बेसिक टेंशन पैदा हुआ जो आज तक है।
कैसा टेंशन?
एक तरफ थे इंटरनेट के शुरुआती आदर्श, खुलापन, डिसेंट्रलाइजेशन, जानकारी तक सबकी पहुंच, दूसरी तरफ इसे एक प्रॉफिटेबल मार्केट बनाने की कोशिशें।
और यहीं से नेट न्यूट्रलिटी जैसी बहसें शुरू हुई।
बिल्कुल, नेट न्यूट्रलिटी।
ये क्या है आसान शब्दों में?
नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है वो सिद्धांत कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां इंटरनेट पर सारे डेटा के साथ एक जैसा व्यवहार करें।
मतलब
वो किसी वेबसाइट या ऐप को जानबूझकर स्लो या फास्ट ना करें या उसके लिए ज्यादा पैसे ना मांगे,
सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो।
अच्छा, ये उसी शुरुआती खुलेपन वाले विचार से जुड़ा है जिस पर अब बिजनेस इंटरेस्ट का दबाव है। और एक और जरूरी बात जिस पर न्यूमन जोर देते हैं वो ये कि इंटरनेट कोई हवा हवाई चीज नहीं है, ये जो हम क्लाउड सुनते रहते हैं।
हाँ, क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड कंप्यूटिंग।
हाँ, तो न्यूमन कहते हैं कि ये असल में एक मिथक जैसा है।
मिथक? लेकिन हम तो सब कुछ क्लाउड पर सेव करते हैं, ये फिजिकल कैसे है? ये थोड़ा चौंकाने वाला है।
बिल्कुल, न्यूमन हमें याद दिलाते हैं कि इंटरनेट असल में ठोस चीजों से बना है। समंदर के नीचे हजारों किलोमीटर लंबी मोटी मोटी केबल जो महाद्वीपों को जोड़ती हैं।
अरे हाँ, वो केबल्स।
और बड़े बड़े वेयरहाउस जैसे डेटा सेंटर्स जिनमें लाखों सर्वर दिन रात चलते हैं और भयंकर बिजली खाते हैं। इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स जहाँ अलग अलग नेटवर्क ट्रैफिक एक्सचेंज करते हैं। ये सब असली है, फिजिकल है।
और ये बात मायने क्यों रखती है? इसकी फिजिकल होने से क्या फर्क पड़ता है?
कई कारणों से। पहला, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिकाना हक कुछ ही बड़ी टेक और टेलीकॉम कंपनियों के पास सिमटता जा रहा है, मतलब डेटा फ्लो पर उनका कंट्रोल बढ़ रहा है।
अच्छा।
दूसरा, ये केबलें और डेटा सेंटर किसी न किसी देश की जमीन पर हैं, समंदर में हैं, तो उन पर उस देश के कानून लागू होते हैं। सरकारें नजर रख सकती हैं या बंद भी कर सकती हैं, ये जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है।
मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी।
बिल्कुल। और तीसरा, इसका पर्यावरण पर भी असर है। इन डेटा सेंटर्स को चलाने में बहुत ऊर्जा लगती है, तो इंटरनेट कोई जादू नहीं, एक बहुत बड़ी मशीन है जिसका कंट्रोल और असर असली दुनिया पर पड़ता है।
ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, अब आते हैं इसके सामाजिक असर पर। समाज और कम्युनिटी बनाने के तरीके कैसे बदले हैं?
हाँ, जाहिर है, ऑनलाइन कम्युनिटीज बनी है। लोग अपनी पसंद, शौक या मदद के लिए भी ऑनलाइन ग्रुप्स में जुड़ते हैं। हम सब किसी ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक कम्युनिटी का हिस्सा हैं ही।
हाँ, ये तो है। इंटरनेट एक तरह का नया सामाजिक चौराहा बन गया है।
बिल्कुल, और इसने हमारी प्राइवेट और पब्लिक लाइफ के बीच की लाइन को भी धुंधला कर दिया है। हम वो पल भी शेयर कर देते हैं जो पहले शायद सिर्फ परिवार या करीबी दोस्तों तक होते थे।
लेकिन इसके कुछ चैलेंज भी तो है।
हाँ हैं। ये ऑनलाइन समुदाय कई बार बहुत अस्थिर होते हैं, जल्दी बनते बिगड़ते हैं। कभी कभी ये हमें असल दुनिया से काटकर अकेला भी महसूस करा सकते हैं।
और वो प्लेटफॉर्म जिन पर ये बनते हैं, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, उनका अपना कंट्रोल होता है ना?
बिल्कुल, उनके अपने नियम, अपने एल्गोरिथम होते हैं जो तय करते हैं कि हमें क्या दिखेगा, किसकी आवाज ज्यादा सुनाई देगी। वो इन कम्युनिटीज के माहौल को काफी हद तक कंट्रोल करते हैं।
और पहचान का सवाल। हम सब ऑनलाइन अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, फोटो, विचार शेयर करते हैं, ये हमारी असली पहचान है या एक तरह का परफॉर्मेंस?
यही सवाल न्यूमैन उठाते हैं। ऑनलाइन हम जो इमेज पेश करते हैं वो कितनी सच्ची है, कितना उसमें दिखावा है। हम अक्सर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान के अलग अलग पहलू दिखाते हैं।
सही बात है।
लेकिन इस ऑनलाइन पहचान के साथ ही हमारी प्राइवेसी का सवाल भी जुड़ा है। हमारी हर ऑनलाइन एक्टिविटी ट्रैक हो रही है, हमारी पसंद नापसंद, दोस्त, लोकेशन, सब जानकारी इकट्ठा हो रही है।
और यहीं से ये जानकारी एक बिकने वाली चीज बन जाती है।
एग्जैक्टली। और यहीं हम पहुंचते हैं इंटरनेट इकोनॉमी के उस मॉडल पर जिसे न्यूमैन सर्वेलेंस कैपिटलिज्म या निगरानी पूंजीवाद कहते हैं।
निगरानी पूंजीवाद,
ये शायद उनके एनालिसिस का सबसे अहम और चौंकाने वाला हिस्सा है।
हाँ, क्योंकि ये आज के इंटरनेट का मुख्य बिजनेस मॉडल बन गया है।
ये है क्या असल में निगरानी पूंजीवाद?
आसान भाषा में कहे तो ये वो बिजनेस मॉडल है जो हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज पर लगातार नजर रखकर हमारी बिहेवियर, हमारी पसंद नापसंद का डेटा इकट्ठा करके, उसका एनालिसिस करके और फिर उस जानकारी को बेचकर पैसा कमाता है।
किसको बेचकर?
ज्यादातर एडवर्टाइजर्स को,
ताकि वो हमें बिल्कुल सटीक टारगेटेड विज्ञापन दिखा सकें। हमें जो सर्च इंजन, सोशल मीडिया या कई ऐप्स फ्री में मिलते हैं,
उनकी असली कीमत हम अपने डेटा और प्राइवेसी से चुकाते हैं।
बिल्कुल, हम कस्टमर नहीं बल्कि प्रोडक्ट बन जाते हैं।
बाप रे, मतलब हमारी हर क्लिक, हर लाइक, हर सर्च कोई और देख रहा है ताकि वो पैसा कमा सके। ये तो
हाँ, और इसी से जुड़ी है अटेंशन इकोनॉमी, मतलब हमारा ध्यान खींचने और उसे बनाए रखने की होड़, क्योंकि हमारा ध्यान ही तो वो चीज है जिसे ये कंपनियां बेच रही हैं।
बिल्कुल, और इसमें बड़ी टेक कंपनियां गूगल, मेटा, अमेज़न, एप्पल, ये सिर्फ सर्विस नहीं दे रही, ये एक तरह से गेटकीपर बन गई हैं।
गेटकीपर कैसे?
वो तय करती हैं कि हम क्या जानकारी देखते हैं, किन लोगों से जुड़ते हैं, क्या खरीदते हैं। ये एक तरह का नया सेंट्रलाइजेशन है उसी इंटरनेट पर जो कभी अपने डिसेंट्रलाइज्ड नेचर के लिए जाना जाता था।
हाँ, ये विडंबना ही है।
अब अगर संस्कृति और राजनीति की बात करें तो यहाँ भी इंटरनेट की भूमिका दोधारी तलवार जैसी है ना?
बिल्कुल। एक तरफ इसने कल्चर का डेमोक्रेटाइजेशन किया है, कोई भी कंटेंट बना सकता है, आवाज उठा सकता है, यूजर जनरेटेड कंटेंट, यूट्यूब, ब्लॉग्स, इंस्टाग्राम रील्स
सब इसी के उदाहरण हैं। लेकिन दूसरी तरफ,
अब दूसरी तरफ नए तरह के गेटकीपर आ गए हैं। एल्गोरिदम तय करते हैं कि कौन सा कंटेंट वायरल होगा, किसे ज्यादा लोग देखेंगे। प्लेटफॉर्म की अपनी पॉलिसीज तय करती हैं कि क्या बोला जा सकता है क्या नहीं, तो वो खुलापन उतना खुला नहीं रहा।
और राजनीति में हमने देखा है कैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया आंदोलनों को ऑर्गेनाइज करने का जरिया बने हैं, और अब स्प्रिंग हो या भारत में हुए कई आंदोलन।
हाँ, ये डेमोक्रेसी और अभिव्यक्ति की आजादी का मंच बन सकता है, लेकिन
लेकिन
यही टेक्नोलॉजी सरकारी निगरानी, प्रोपेगेंडा फैलाने और कंट्रोल का भी शक्तिशाली साधन है। कई देशों में सरकारें इंटरनेट पर कड़ी नजर रखती हैं, कंटेंट सेंसर करती हैं। चीन का ग्रेट फायरवॉल इसका बड़ा उदाहरण है।
चुनावों में दखलंदाजी की बातें भी सामने आई हैं।
हाँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल। तो इंटरनेट एक पॉलिटिकल अखाड़ा बन चुका है जहां आजादी और कंट्रोल की ताकतें लगातार टकरा रही हैं।
और इन सब के ऊपर है गवर्नेंस का सवाल, मतलब इस ग्लोबल नेटवर्क के नियम कौन बनाएगा, ये बहुत ही पेचीदा मामला है।
हाँ, एक कोशिश हुई है मल्टी स्टेक होल्डर मॉडल बनाने की, जिसमें ICANN जो डोमेन नेम मैनेज करती है, या IETF जो टेक स्टैंडर्ड्स तय करती है, जैसी संस्थाएं हैं।
इनमें कौन कौन शामिल हैं?
इनमें इंजीनियर्स, कंपनियां, सरकारें, एकेडमिक्स, सिविल सोसाइटी, सब मिलकर नियम बनाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन ये मॉडल अब दबाव में है,
बहुत दबाव में है। एक तरफ बड़ी टेक कंपनियों का दबदबा है, वो अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस के जरिए ही करोड़ों लोगों के लिए नियम तय कर देती हैं।
हाँ, वो लंबे चौड़े नियम जिन्हें कोई पढ़ता नहीं।
सही कहा। और दूसरी तरफ दुनिया भर की सरकारें अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता जता रही हैं। वो चाहती हैं कि उनके नागरिकों का डेटा देश के अंदर रहे, वो अपने हिसाब से इंटरनेट को रेगुलेट करना चाहती हैं।
और इससे वो स्प्लिंटरनेट का खतरा पैदा हो गया है।
हाँ, यानी इंटरनेट की अलग अलग देशों के नियमों के हिसाब से कई टुकड़ों में बट जाने का खतरा। और इन सब के बीच हम जैसे यूजर्स के अधिकार हैं, प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिनकी लड़ाई चल रही है, ये गुत्थी अभी सुलझी नहीं है।
तो अगर हम न्यूमैन के एनालिसिस से कुछ मेन पॉइंट्स निकालें तो क्या होंगे? पहला तो ये कि इंटरनेट न्यूट्रल नहीं है।
बिल्कुल, ये सिर्फ एक टूल नहीं, ये समाज को बना भी रहा है और समाज से बन भी रहा है। इसमें बनाने वालों के वैल्यूज और इंटरेस्ट झलकते हैं।
हाँ, जब हम अपनी न्यूज फीड देखते हैं तो याद रखना चाहिए कि वो किसी एल्गोरिथम ने तय की है, और वो एल्गोरिथम किसी इंसान या कंपनी ने बनाया है।
दूसरी बड़ी बात है ये सफर डिसेंट्रलाइजेशन से वापस सेंट्रलाइजेशन की ओर। इंटरनेट शुरू हुआ था एक खुले बिखरे हुए नेटवर्क के तौर पर,
लेकिन आज हमारी ज्यादातर ऑनलाइन जिंदगी कुछ ही बड़ी कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर सिमट गई है। हम सुबह से रात तक गिने चुने ऐप्स पर ही रहते हैं।
तीसरी अहम सीख है डिजिटल दुनिया की फिजिकल रियलिटी। वो क्लाउड वाला आइडिया भूल जाइए।
हाँ, इंटरनेट असली केबलों, सर्वरों और डेटा सेंटरों पर चलता है, और इन पर किसका कंट्रोल है ये बहुत मायने रखता है।
अगली बार जब कुछ ऑनलाइन सेव करे तो सोचे कि वो डेटा असल में कहाँ जा रहा है, किस कंपनी के सर्वर पर।
चौथा और शायद सबसे जरूरी, निगरानी ही आज के इंटरनेट का मुख्य आर्थिक इंजन है।
बिल्कुल, वो फ्री सेवाएं असल में फ्री नहीं है, कीमत हम अपनी पर्सनल जानकारी से चुका रहे हैं। भारत में हम रोज टारगेटेड एड्स देखते हैं, हमारी पसंद के हिसाब से चीजें ऑनलाइन दिखती हैं, ये उसी सर्विलेंस इकोनॉमी का नतीजा है।
और पांचवी बात, इंटरनेट एक पॉलिटिकल लड़ाई का मैदान है। यहाँ डेमोक्रेसी और कंट्रोल, फ्री स्पीच और सेंसरशिप, पब्लिक इंटरेस्ट और प्राइवेट प्रॉफिट, ये सब लगातार टकरा रहे हैं।
हाँ, भारत में भी हम डेटा प्रोटेक्शन लॉज, ऑनलाइन स्पीच और सरकारी रेगुलेशन पर बहसें देख रहे हैं, ये सब इसी बड़े संघर्ष का हिस्सा है।
न्यूमैन के काम में कुछ कोट्स या विचार हैं जो इन बातों को और साफ करते हैं। जैसे एक जगह वो कहते हैं,
इंटरनेट एक चीज नहीं बल्कि एक स्थान है, एक सामाजिक स्थान जहाँ नई मानवीय संस्कृति और समुदाय उभरते हैं।
ये हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक जीती जागती सामाजिक दुनिया है।
हाँ, और एक और विचार, डिजिटल प्लेटफॉर्म सिर्फ लोगों को जोड़ते नहीं, वे अपने डिजाइन, नीतियों और एल्गोरिदम के माध्यम से उन कनेक्शंस की प्रकृति को सक्रिय रूप से आकार देते हैं।
मतलब टेक सिर्फ माध्यम नहीं, वो खुद हमारे रिश्तों और समाज को ढाल रही है।
और सर्विलांस कैपिटलिज्म का सार इस विचार में है, मुफ्त इंटरनेट पर आप ग्राहक नहीं हैं, आप उत्पाद हैं। प्रमुख व्यवसाय मॉडल निगरानी के माध्यम से मानव ध्यान और व्यवहार पर कब्जा करना और उसका मुद्रीकरण करना है।
ये सीधी और थोड़ी चुभने वाली बात है।
बिल्कुल। और अंत में ये चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनेट का भविष्य इंजीनियरों के बीच एक तकनीकी बहस नहीं है, यह मौलिक मूल्यों पर एक राजनीतिक संघर्ष है। गोपनीयता बनाम सुरक्षा, खुलापन बनाम नियंत्रण, सार्वजनिक हित बनाम निजी लाभ।
ये हमें याद दिलाता है कि इंटरनेट का भविष्य हमारे हाथ में है और ये तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक चुनाव का मामला है।
तो सवाल ये है कि हम आम नागरिक इस सारी जानकारी का क्या करें, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे इस्तेमाल करें?
हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है।
सबसे पहली बात तो यह है कि हमें क्रिटिकल मीडिया कंज्यूमर बनने की जरूरत है। जो भी हम ऑनलाइन देखते या पढ़ते हैं उस पर सवाल उठाना जरूरी है।
कहाँ से आ रही है ये जानकारी, सोर्स क्या है, कोई एजेंडा तो नहीं, एल्गोरिथम जो दिखा रहा है क्या वो पूरी पिक्चर है या सिर्फ एक इको चेम्बर?
बिल्कुल। दूसरा, हम अपनी पर्सनल प्राइवेसी की रक्षा के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। ये समझना कि हमारा डेटा कैसे इस्तेमाल हो रहा है हमें ज्यादा सचेत बनाता है।
जैसे ऐप्स की परमिशन सेटिंग्स देखना।
हाँ, कौन सा ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं, कौन सा सर्च इंजन, इस पर सोचना। शायद कुछ लोग प्राइवेसी फोकस्ड टूल्स या VPN इस्तेमाल करने के बारे में सोचें।
ये सिर्फ मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं वाली बात नहीं है, बल्कि अपने डेटा पर अपना अधिकार समझने की बात है।
सही।
तीसरा, जागरूक नागरिक जुड़ाव जरूरी है। जब नेट न्यूट्रैलिटी, डेटा सुरक्षा कानून या बिग टेक के कंट्रोल पे बहस होती है तो हमें समझना चाहिए कि ये सिर्फ टेक इश्यूज नहीं है,
ये हमारे अधिकारों और समाज के भविष्य से जुड़े हैं। इन बहसों में हिस्सा लेना, आवाज उठाना महत्वपूर्ण है।
और आखिर में डिजिटल लिटरेसी और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना, ये समझना कि हमारी ऑनलाइन पहचान कैसे बनती है, हम पर इसका क्या असर पड़ता है और ऑनलाइन ऑफलाइन लाइफ के बीच एक हेल्दी बैलेंस कैसे बनाएं।
ये सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करना सीखना नहीं बल्कि उसे समझदारी और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना सीखना है।
बिल्कुल। अगर मुझसे पूछा जाए कि इस पूरी बातचीत से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख क्या रही, तो वो है इंटरनेट की फिजिकल रियलिटी को समझना। ये क्लाउड का जो पर्दा था ना, वो हट गया। ये जानना कि ये सब असली केबलों और सर्वरों पर टिका है और उन पर किसका कंट्रोल है, ये वाकई आंखें खुलने वाला था।
और मुझे जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर गई वो है इंटरनेट की शुरुआत और आज की हकीकत के बीच का फासला। कैसे एक खुले, सहयोगी, नॉन कॉमर्शियल सपने से शुरू होकर ये आज बड़े पैमाने पर सर्वेलेंस और प्रॉफिट पर आधारित सिस्टम बन गया है। ये बदलाव हमें बहुत कुछ सिखाता है।
हाँ, कि कैसे अच्छी नीयत से शुरू हुई चीजें भी गलत दिशा में जा सकती हैं।
तो कुल मिलाकर संदेश यही है कि हमें सिर्फ इंटरनेट के पैसिव यूजर बने रहने से आगे बढ़कर जागरूक और एक्टिव डिजिटल नागरिक बनना होगा।
हमें सिस्टम को समझना होगा, सवाल उठाने होंगे और इसके भविष्य को आकार देने में अपनी भूमिका निभानी होगी।
बिल्कुल। इंटरनेट का भविष्य पत्थर की लकीर नहीं है, यह हमारे कलेक्टिव डिसीजंस, हमारी क्रिटिकल सोच और हमारी भागीदारी पर निर्भर करेगा।
ये सिर्फ तकनीक का भविष्य नहीं, हमारे समाज का, हमारी आजादी का भविष्य है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।